नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बहरेश्म बलवानी से अपना श्रीवास्तव को। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना कि स्त्री मुक्ति की चेतना का इतिहास। आधुनिक स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक बन चुके 8 मार्च को सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर 1909 में मनाया गया था। वर्ष 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल का कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इसे अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय तक दुनिया का अधिकतर देशों से महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। दरअसल स्त्री मताधिकार के लिए संघर्ष ही उस समय महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद महिला दिवस पर 1917 में जार शासित रूस की महिलाओं ने रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी, अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इस तरह महिला दिवस स्त्री के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों का प्रतीक बन गया। मगर हम अतीत के पन्नों को पलट कर शुरू करें तो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में स्त्री मुक्ति का पहला मुख्य स्वर संभवतः ईसा पूर्व 6 सदी में दिखाई देता है। पहली बार गौतम बुद्ध स्त्रियों को बौद्ध बिहार में प्रवेश की अनुमति देते हैं। तब पहली बार जाति वर्ग और प्रतिशतता से पीड़ित स्त्रियां बौद्ध धर्म स्वीकार कर बिछुड़ियों का जीवन वर्ण करती हैं। इन बिछड़ियों में थेरी कहा गया है। इन्होंने जो अपनी आपबीती लिखी उसे थेरी गाथा कहा जाता है। इसमें ज्ञान प्राप्तियतर थेरियों के संघर्ष की कथा 522 गाथाओं में संकलित है। इन कथाओं में एक स्त्री के रूप में उनके शोषण की अभिव्यक्ति है जो उसके प्रति बहुत गहरा के रूप में उनके शोषण की अभिव्यक्ति की गई है। विद्रोह भी है। इस तरह थेरी गाथा को स्त्री मुक्ति का प्रारंभिक दस्तावेज कहा जा सकता है। दरअसल थेरियों ने धर्म और अध्यात्म को पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज से मुक्ति का माध्यम बनाया जो अंततः आत्म साक्षात्कार तक का भी माध्यम बना। मगर यहीं तक थेरियों का संघर्ष सीमित नहीं रहा बल्कि वे बतौर स्त्री अपनी पीड़ा और उसके सांसारिक कारण को समझती हैं, अपने व्यक्तित्व अर्जित करती हैं और फिर भौतिक संसार से भरा भौतिक संसार की यात्रा को अपना ध्येय बनाकर परम पद प्राप्त करती हैं। कहा जाता है कि प्रतिसत्तात्मक संरचना द्वारा किए जा रहे दमन शोषण के एहसास को दर्ज करने की मानसिक तैयारी और उनकी अभिव्यक्ति पूरी स्त्री मुक्ति की पहली पीढ़ी है। उस शोषण से इनकार कर उसके खिलाफ संघर्ष को बुलंद करना उनकी दूसरी पीढ़ी हो सकती है। इस संघर्ष के दौरान अपने विचार और रचनाशीलता की धार को तेज कर स्त्री अपना व्यक्तित्व अर्जित करती है। जब वह विधायक प्रश्न कर सकती है, समाज से और राज्य से उत्तर मांग कर सकती हैं, मगर यहाँ तक की यात्रा महज स्त्री होने भर की यात्रा है। स्त्री को असल आजादी तो तब मिलेगी जब स्त्री नाम की संज्ञा और विशेषण दोनों ही से उसे मुक्ति मिल जाए और उसे एक इंसान के बतौर जीने का हक मिल जाए। तब उसके लिए मनुष्य होने की परम संभावना तक पहुंचने की यात्रा थोड़ी सहज हो सकेगी। अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन में स्त्री मुक्ति का एक पूर्ण व्यवस्था दिखती है। हालांकि यह व्यवस्था सायास नहीं थी लेकिन यहाँ उसकी उपस्थिति तो थी। ऐसा होने का कारण भक्ति आंदोलन की प्रकृति में छिपा है। भक्ति आंदोलन में बहुत कुछ ऐसा था जिसे आधुनिक कहा जा सकता है और भक्ति का भाव आधुनिक वित्त से बहुत कुछ मेल खाता है। भक्ति आंदोलन में धर्म दरवाजे तक चला आता है। शास्त्र पंडितों और देवालों की कैद से मुक्ति न केवल धर्म को बल्कि ईश्वर को भी मिलती है। धर्म और ईश्वर दोनों ही दरवाजे पर दस्तक देते और सामान्य लोगों के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तब का ईश्वर दिव्य जितना दिव्य था उतना ही मानवीय भी था। उसका भी अपना परिवार था, एक स्वभाव था। भगवान भी मनुष्य की भांति विरोधाभासों का तुलना बना। ईश्वर जब अभाज्यात भाषा में बात नहीं करता है तब वह देशज भाषा में लोक मुहावरों के बोल बतिया रहा था। इस तरह भक्ति आंदोलन भगवान जनता के वित्त में आ गए और धर्म की दुनिया को एक किस्म का लोकतंत्र जटित हुए। इसी प्रकार जिनमें स्त्री भी थी ना प्रश्न करने की साहस पाया ना ही वे केवल धार्मिक संरचनाओं में अनिहित विषमताओं पर सवाल उठा सके बल्कि सामाजिक सत्ता संरचनाओं में उपस्थित शोषण के ताने बाने का भी प्रभाव कर सके। इसलिए उठो स्त्रियों, उठो, जागरूक हो जाओ और अपने हक के लिए हमेशा लड़ो। धन्यवाद।